नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, किसानों की खुशहाली प्रदेश की समृद्धि का मूल आधार। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। जनगणना 2027 के कल से शुरू होने वाले पहले चरण के लिए सरकार ने 33 प्रश्नों को अधिसूचित किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परिणाम आज जारी किया जाएगा। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई भागों में आंधी बारिश, कुछ स्थानों पर ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों की खुशहाली प्रदेश की समृद्धि का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक की जानकारी से फसल उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री कल जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 ग्राम के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। मई के दूसरे पखवाड़े में होने वाले इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए श्री शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय के साथ काम करने और देश विदेश के कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों को इससे जोड़ने को कहा। मुख्यमंत्री ने गांव-गांव अभियान चलाकर किसानों को जागरूक करने, प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, डेयरी और मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार तीर्थराज पुष्कर में सुविधाएं बढ़ाकर इसे भव्य स्वरूप देने के साथ ही वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पुष्कर से आए साधु संतों और जनप्रतिनिधियों के दल ने विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पुष्कर के घाटों के सौंदर्यकरण के साथ ही पौराणिक विरासत के संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुष्कर के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का संस्कृति के प्रति जुड़ाव और अधिक मजबूत हो सकेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित जनप्रतिनिधि और पुष्कर के स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। देश भर में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से शुरू होगा। इस चरण में पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों को सरकार ने अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में घर घर जाकर सूचीकरण और स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। यह चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जाति आधारित गिनती जनगणना के दूसरे चरण में की जाएगी।
जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्थाएं पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक वृहद कार्य है। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। यह जनगणना दो चरणों में सम्पन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है।
सेना में अग्निवीर और रेगुलर कैडर के सैनिक के तौर पर शामिल होने के लिए पंजीकरण को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। सेना की विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई है। इच्छुक युवा पंजीकरण के लिए JIA यानी ज्वाइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित सेना भर्ती कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE की 12वीं कक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी के कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों के नतीजे सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये परिणाम जारी करेंगे।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के तीनों संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा पीसी के माध्यम से अजमेर कार्यालय से जुड़कर 10 बजे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस दौरान बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़, संभागीय आयुक्त और बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ भी जुड़ेंगे। बोर्ड इतिहास में ऐसा पहली बार है जब मात्र 20 दिनों में 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। 11 मार्च को खत्म हुई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 10,09,009 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे। इससे पूर्व सबसे कम समय में 2022 में 35 दिनों में 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष से नया सत्र पहली बार 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। सत्रारंभ के साथ, शिक्षारंभ के संदेश के साथ शुरू होने वाले सत्र में नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट दर कम करने और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस सघन अभियान के दौरान 6, 10 और 15 अप्रैल को हर घर तक शिक्षाकर्मी पहुंचकर 3 से 18 साल तक के बच्चों का चिन्हीकरण करेंगे। इस साल पहले दिन ही सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य सहायक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल से डिजिटल स्वास्थ्य जांच अभियान भी चलाया जाएगा। देश के कई हिस्सों में आज भी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भगवान महावीर की विशेष आराधना कर प्रभात फेरियां और रथ यात्राएं निकाली जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती पर देशवासियों और जैन समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जीवन में सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भगवान महावीर के विचार सदैव मानवता के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान महावीर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए उनके सिद्धांतों को मौजूदा तौर के लिए प्रासंगिक बताया। हनुमानगढ़ के नोहर में कल रात एक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 18 लोग घायल हो गए। जिले के भूकरका भद्रकाली मार्ग पर 2 लग्जरी गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हताहतों को स्थानीय लोगों की मदद से नोहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 4 गंभीर घायलों को हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई भागों में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा जा रहा है। दक्षिण और पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी भागों में भी कई जगह बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई। आंधी, बारिश और बादल छाए रहने से प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, सीकर, कोटा, डबोक, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर और चूरू सहित कुछ अन्य शहरों में बारिश हुई। कोटा में सबसे ज्यादा करीब 1 इंच बरसात हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने से जिले में कई स्थानों पर पेड़ गिर गए।
कल जिले के विभिन्न हिस्सों में हुई जोरदार बारिश और करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। अंधड़ के कारण कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए। वहीं खेतों और खलियानों में कटी पड़ी गेहूं की फसल भीगने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आज सुबह से ही मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। आसमान साफ होने के साथ ही चटक धूप निकल आई है। धूप खिलने से किसानों को भीगी हुई फसल सुखाने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
नागौर के ग्रामीण इलाकों में भी ओलावृष्टि के कारण इसबगोल की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आज शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, किसानों की खुशहाली प्रदेश की समृद्धि का मूल आधार। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। जनगणना 2027 के कल से शुरू होने वाले पहले चरण के लिए सरकार ने 33 प्रश्नों को अधिसूचित किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परिणाम आज जारी किया जाएगा। और राज्य के पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई भागों में आंधी, बारिश, कुछ स्थानों पर ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।